स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आइए आज सुनते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी कहानी गरम कोट। मैंने देखा है मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा सूट आवेजा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया है, और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरी क्लब में जाने से परहेज़ करूँ तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे विचारों के घोड़ों को चाबुक लगाते हैं तो मैं अपने कोट के पुरानेपन को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ, यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझ जैसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी ज़रूरतें तर्क करनी पड़ती हैं, और उन्हें जिगर तक पहुँचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झोंटा पहनना पड़ता है। ये गर्म कोट मैंने पार साल दिल्ली दरवाजे के बाहर से पुराने कोटों की दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड को का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरी क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी जात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और साड़ियां। चंद साल से हर नत्थू खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुजरे कुछ सालों से कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी सजावट का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारी कंगाली का साफ साफ सबूत है। वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान शौकत और ऊपरी बनावट की परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल ने घर करना शुरू किया। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज तेज चलने से मेरे जिस्म में गर्मी आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के बाहरी असर ने मेरे कोट खरीदने के इरादे को पूरा ना होने दिया। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर तकलीफ देह नजर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स असल में अमीर हों वो बाहरी शान की जरा सी भी फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों उन्हें तो फटा हुआ कोट भी कमीज भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि? मैंने घबरा कर खुद से जिरहबाजी छोड़ दी और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। आटा गूंथते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफा लकड़ियां गीली भेजी थीं। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज्यादा फूंक मारने से गीली लकड़ियों में से और भी ज्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा। इन भीगी आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या, मैं तमाम दुनिया से जंग करने को तैयार हूं। बहुत मुश्किलातों के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटखने लगी। आखिर उन भीगी आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आंख बुझा दी। शम्मी ने मेरे कंधों पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी सी आवाज से कहा, हां सी दूं यहां से? सी दो, अगर एक दो तार निकालकर रफू कर दो तो क्या कहने हैं। कोट को उल्टाते हुए शम्मी बोली, अस्तर तो मुई टिड्डियां चाट रही हैं, नकली रेशम का है ना ये, देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने के बजाय तुम मेरे पास बैठो। शम्मी देखती नहीं हो मैं दफ्तर से आ रहा हूं, ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया, बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूं, इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है, आंखें दुखने लगती हैं, आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं, वर्स्टेड के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पा मणि भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकतें कथकली की मुद्राओं से ज्यादा मजेदार थीं। मुझे देखते हुए पुष्पा मणि ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया, बोली, बाबूजी आप आ गए, आज टीचर ने कहा था मेज पोश के लिए दुसुती लाना और गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएंगी, गुनिया माप के लिए और गर्म कपड़ा। चूंकि उस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो ही रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है, मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूं। वो पुष्पामणि का रोना और मेरा नया कोट। मैंने आदत के खिलाफ ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती हो। तुम्हारी आंखें, याद आया, देखो तो पुष्पामणि कैसे रो रही है। पोपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने, बोलो तो? दुसुती, गुनिया माप के लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नन्हा भी तो ट्राइसिकल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा, उसे गुब्बारा ना ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी कहाँ है बच्चू? जी सो रहा है, शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सुलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है। फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूं? पहले मैंने कहा, दोनों। मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, मैंने खुद ही दबते हुए कहा। तुम खुद भी तो उस दिन काफूरी सफेद रंग के मीनाकार कांटे के लिए कह रही थी। हाँ जी कह तो रही थी, मगर उस वक्त तो मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरा कोट कोहनियों पर से रफू कर दिया। एक जगह जहां पर से कपड़ा बिल्कुल उड़ गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सिलवटें पड़ने लगी। उस वक्त मिराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे ख्यालों की मजबूती थी। मेरी यही सोच अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मैराजुद्दीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सिलाई समेत 100 रुपए से भी ज्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूं, उसकी दुकान में लटके हुए सूटों का ख्याल करना फिजूल है, फिजूल। मुझे फुर्सत में पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीजों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पामणि और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि यूं ही काफूरी सफ़ेद रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नज़र उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थीं और उधर शम्मी की आंखें भी 2 चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थीं। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है, शम्मी ने कहा। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा। और उपले? जी हाँ, उपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी जल्द ही गर्म कोट के लिए अच्छा सा वर्स्टेट खरीद लूँ, ताकि तुम्हारी आंखें क्यों ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में गुंजाइश नहीं, अगले माह जरूर जरूर। जी हाँ, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पामणि ने कई चीज़ें लिखाई, दुस्ती, गुनिया माप के लिए गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा, DMC के गोले, गोटे की मगजी और इमरतियाँ और बहुत से गुलाब जामुन। मुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवा खाना से रिफाइल जमानी का एक डिब्बा भी ला रखूं। दूध के साथ थोड़ा सा पीकर सो जाया करूंगा। मगर मुई पुष्पा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहाँ रखी थी। और जब पुष्पामणि ने कहा गुलाब जामुन, तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, सबसे ज़रूरी तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहाँ छुपा दूंगा, जहाँ सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है। और पुष्पामणि से कहूँगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब हालत होगी। फिर मैंने सोचा, बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसिकल की जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, इत्राफिल जमानी? शम्मी बच्चू को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटी को ट्राइसिकल दे दूंगी अगले महीने। बच्चू बेटी सारा दिन चलाया करेगी ट्राइसिकल और पोपी मुन्ना नहीं लेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसिकल के लिए 6-7 रुपये जेब में ना हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत गलत है। खामखा अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शमी बेल्जमी आईने की अंडाकार टुकड़ी के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानू। तुम कह रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलेदार की बीवी के यहां जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो, शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के समझ लेने वाले होते तो कभी का गर्म। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हाँ, जब सर्दी, फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को, जिसे बनाने में महज 10 रुपये खर्च हुए थे, अपने मन में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर इज्जतदार आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक अच्छे तगड़े जेंटलमैन की गर्दन, नेकटाई और चुस्त कॉलर के कारण मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने ना मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपने मन में मैं शम्मी की काफूरी सूट पहने तस्वीर को कांटे पहना कर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे, बेचैनी में मैं एक भी न चुन सका। उस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया, वो तफरी क्लब से, जो दरअसल परेल क्लब थी, 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और खुशी की लहरें दिखाई देती थी तो कोई ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही बेमेल दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, ये यजदानी ने मेरे कंधे पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपए के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो। उस बात का भी असर शुरू हुआ और मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यजदानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा, और इसमें बात ही क्या है। यजदानी और संता सिंह ने कई बार मुझसे कहा है कि वो ऊंचे ख्यालों की ज्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टेड की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टेड की ज्यादा परवाह करता हूं और ऊंचे विचारों की कम। यजदानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़र से ओझल ना हो गया, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वर्स्टेड को पीछे से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पामणि के गुलाब जामुन और इमरतियाँ खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचौड़ियाँ खूब फूल रही थीं। मेरे मुँह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के ख्याल से पुष्पामणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और इतराफिल जमानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज़ पर कोहनियाँ टिका कर बहुत चाव से कचौड़ियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था, 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था, नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थीं। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हा में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पशम उतार जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ आभार से मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचौड़ियों के धुएं में से आग की सुर्ख इमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं और जहन में पुष्पामणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस बीच जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन, जिसमें से दहकते हुए सुर्ख लाल कोयले लाइन पर गिर रहे थे, मगर उस वक्त करीब ही की सॉल्ट रिफाइनरी से बहुत से मजदूर ओवरटाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मन चले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा। पुष्पामणि के लिए गोटे की मगजी, दुसुती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे ना खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह हो सकता है? किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती सी दुनिया बर्बाद कर दी गई। जी तो करता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ के रख दूं। मगर पानी में कश्ती पर से एक लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता, सारा पानी तो ऊपर से अपर बारी दुआब ले लेती है, और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती, दूसरे ने कहा। मैं लाचार घर की तरफ लौटा और निहायत उदास मन से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पामणि और बच्चू नन्हा बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के बुझे से कोयलों को तापती हुई कई बार ऊंघी और कई बार चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शमी सब कुछ समझ गई। वो कुछ न बोली, कुछ बोल ही न सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोते हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी बुरी ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में परेल खेल रहे थे। उन्होंने दो दो घूंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो ऊंचे ख्यालों की वर्स्टेड से ज्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफेद सूट पहने हुए देखकर ना आता तो शायद परेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी न चाहता। मैंने कहा, काश मेरी भी जेब में एक दो रुपए होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता, मगर मेरी जेब में तो कुल 4.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह निहायत उम्दा वर्स्टेड सूट पहने क्लब के सेक्रेटरी नेक आलम से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को परेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से परेल खेलने के लिए तो उसे अपने गिरह के दाम दे देने चाहिए। अंदरूनी कैसा बाई निचली जेब, कोट में पीछे की तरफ मुझे कोई कागज़ सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाई जेब के सुराख के नज़दीक जा निकाला। वो 10 रुपये का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजर कर कोट के अंदर ही गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से बदला लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक परेल वरेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतज़ार किए बगैर शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही ख्यालों का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया को बनाने में 10 रुपये से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज़ छीन कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नज़र लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा, ना ख्वाब इतना रंगीन हो और ना उसके टूटने से इतना दुख पहुँचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खेमू पड़ोसन बाजार जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोले, मगजी और देखो, पोपी मुंह के लिए गुलाब जामुन ज़रूर लाना, ज़रूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक निहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोरगुल से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं अरसे तक बच्चू नन्हे को उसकी माँ की गैरहाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोल की, गुसलखाने की नीम छत पर, सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसिकल लेने गई है। नहीं जाने दो, ट्राइसिकल गंदी चीज़ होती है, अकथू। गुब्बारा लाएगी बीबी, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, गंदी। मैंने कहा, कोई देखो तो कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पामणि को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भर कर खाएगा ना। उसके मुंह में पानी भर आया, वो गोदी से उतर पड़ी, बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूँ। बच्चू रोता रहा। पुष्पामणि कथकली मुद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे ख्वाबों की उड़ान से कौन रोक सकता था, कहीं मेरे ख्याली किले ज़मीन पर ना आ रहे। इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था शम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास, और एक निहायत धीमे अंदाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपये खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पोपी, मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ ना था। उसने मेज पर बंडल खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्स्टेड था। पुष्पामणि ने कहा, पीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।